ज्ञानतिनिरान्धस्य चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यामनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधाकृष्णपादा सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णकरुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेशगोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चनगौराङ्गी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वतदेवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्या प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। स्वागत है आप सबका भीष्म स्तुति, ये जो भीष्म पंचक के पावन पर्व पर भीष्म स्तुति पर चर्चा कर रहे हैं। आज पांचवा दिवस है। आज वैसे भीष्म पंचक का आखिरी दिवस है। आप में से जिन लोगों ने उपवास किया तो वे उपवास आज तोड़ सकते हैं। साधारणतः भक्त चंद्रोदय के बाद उपवास तोड़ते हैं। ये वैसे समय भी होता है, करीब 11-12 बजे का समय। और अगर वो समय नहीं है तो कोई बात नहीं, अब चंद्रोदय के बाद तोड़ें अच्छा रहेगा। तो आज जिन्होंने भी उपवास किया है तो उन सबके लिए प्रार्थना करते हैं भीष्म देव से कि उनको दृढ़ता भक्ति प्रदान करें। और जिन्होंने नहीं भी किया है उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं कि अगले वर्ष उनको करने की प्रेरणा और दृढ़ता प्रदान करें। तो भीष्म देव की प्रार्थनाओं में अब तक हम लोग कई प्रार्थनाओं पर चर्चा कर चुके हैं। और हम लोग देख चुके हैं कि भीष्म देव ने सबसे पहले अपनी मति इति मति रूपकल्पिता वितृष्णा भगवान को अर्पण की। भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया, तमाल वर्णन, और फिर उन्होंने वो स्मरण करना प्रारंभ किया कि किस प्रकार बहुत सुंदर लग रहे हैं भगवान आप, कहां पर? युद्ध स्थल में। तो देखिए, युद्ध स्थल में भी भगवान की सुंदरता को वो देख रहे हैं। ये भक्त है। जब नरसिंह देव प्रकट होते हैं तो जो भक्त नहीं है, भक्ति नहीं करते हैं, उनके लिए बड़ा विचित्र रूप है, ये क्या है, ये मनुष्य है, जानवर है, क्या है ये? लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए तो सौम्य वपुः बहुत सुंदर रूप है। तो इसलिए भगवान की सुंदरता को हर स्थिति में अनुभव किया जा सकता है अगर हृदय में भक्ति है तो। तो भीष्मदेव हमें ये सिखलाते हैं। तो कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे भीष्मदेव ने वर्णन किया कि आपने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया, आप लेकर गए अर्जुन को सामने, आपने केवल देखा शत्रु पक्ष में और जितने भी सैनिक थे उनकी आयु कम कर दी, मतलब आपने युद्ध लड़ा, बाकी सब में किसी ने युद्ध नहीं लड़ा। और फिर वर्णन किया कि जब आप मेरी तरफ भाग रहे थे क्रोध में आकर, तो कल हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि भीष्म देव की ओर भागे हैं, बड़ी तीव्रता से भीष्म की ओर भाग रहे हैं मारने के लिए, हंतायम हंतायम, मार दूंगा मार दूंगा। तो अब उसी को आगे वर्णन करते हैं भीष्म देव अपनी अगली प्रार्थना में। शित विशीख हतो विशीन दंशः शतज परिप्लुत आततायिनो मे प्रसभं भीससार मद्वदार्थम् सभवतु मे भगवान गतिर्मुकुंदः। बहुत सुंदर वर्णन अब वो कर रहे हैं, शरण ले रहे हैं भगवान की। किन की शरण ले रहे हैं? वो भगवान जो उनकी ओर भागे थे उनको मारने के लिए। तो क्या कह रहे हैं वो? शित, शित मतलब बड़े तीखे नुकीले नुकीले, विशिख विशिख मतलब तीर थे मेरे, मैंने जो तीर छोड़े थे बड़े नुकीले तीर थे। हतः, इससे क्या हुआ? आपको चोट लगी, आपको घाव हुए, और इतना ही नहीं, वो कहते विशीर्ण दंशः, विशीर्ण दंशः मतलब आपका जो कवच था वो पूरा टूट गया। सोचिए कितनी तीव्रता से चलाए, मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैंने ऐसे नहीं कि बाण केवल आपको ऐसे प्रेम से मारे थे कि कहीं आपको चोट ना लग जाए, बड़ी तीव्रता से मार रहा था और मेरे बाणों से आपको घाव हो गया, आपका जो कवच था वो टूट गया। और इतना ही नहीं, वो कहते हैं शतज, शतज मतलब जो जो आपको यहाँ पर चोट लगी थी, जो आपको घाव लगे थे, उनसे क्या हो रहा था? परिप्लुतः, उनमें खून लगा हुआ था। तो मतलब भीष्म देव कह रहे हैं, देखिए भीष्म देव का दर्शन, भीष्म देव कह रहे हैं कि हे कृष्ण, जब आप मेरी ओर आ रहे थे मैं आपको देख रहा था, और मैं क्या देख रहा था कि आपका कवच टूट गया है, घाव घाव हो रहा है, खून निकल रहा है, और आप कैसे आ रहे, बड़ी तीव्रता से मेरी ओर आ रहे, आतताई नहा, बहुत तीव्रता से मेरी ओर आ रहे हैं, जैसे जैसे बस अब मुझे समाप्त कर देना चाहते। और कैसे हैं आप? प्रसभम, प्रसभम मतलब बहुत क्रोध में हैं आप, और क्या कर रहे हैं? मेरी तरफ आ रहे हैं, अभिससार, अभिससार मेरी ओर भाग रहे हैं आप। किस लिए? मदवर वद अर्थम, मद वद अर्थम, मेरा वध करने के लिए। तो ये भीष्मदेव देख रहे हैं और भीष्मदेव कहते हैं हे भवतु, ऐसे जो भगवान हैं, सह वो जो भगवान हैं, भवतु उनके लिए मैं उनकी मेरी वो भवतु गति, भवतु गति मतलब वो मेरी गति हो, ऐसे भगवान, ऐसे पार्थ सारथी, ऐसे भगवान जो मेरी ओर आ रहे हैं मुझे मारने के लिए, वो मेरी गति हो। क्यों? मुकुंदः, कोई पूछ सकता है भीष्म से कि अरे आप कैसे व्यक्ति हो, आप उस रूप की ओर आकर्षित हो रहे हो जो आपको मारने आ रहा है, आपको समाप्त करने आ रहा है, मदवद वद अर्थम, कह दिया खुद ही मेरा वध करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन मैं मेरी गति वही हो। क्यों? मुकुंदम, मुकुंदह मतलब कि आप मुक्ति प्रदान करने वाले हैं, मुक्ति प्रदाता सर्वेशम विष्णु एव न संशयः, शिव जी कहते हैं इस बात को। तो यहां कहते हैं कि आप मुक्ति प्रदाता हैं, तो अगर आप ऐसे आ भी रहे हैं और मुझे मार भी रहे हैं तो फिर भी मैं आपको प्राप्त करूंगा, और वो सच्ची मुक्ति है। तो इस प्रार्थना में भीष्म देव वर्णन कर रहे हैं सच्ची मुक्ति क्या है। सच्ची मुक्ति ये नहीं है कि हम बस जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दूर होना चाहते, हमें कोई कष्ट नहीं चाहिए। सच्ची मुक्ति है कि हम भगवान की शरण लेना चाहते हैं, ये सच्ची मुक्ति है। हम अपने अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना चाहते हैं, ये सच्ची मुक्ति है। उनमें हमारा पूरा ध्यान लगाना चाहते हैं, ये सच्ची मुक्ति है। तो भीष्मदेव देख रहे, भीष्मदेव कह रहे हैं कि आप मेरी ओर आ रहे हैं, मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। और भीष्मदेव क्या देख रहे हैं, भीष्मदेव देख रहे हैं कि प्रभु आप दो कार्य एक साथ कर रहे हो। एक, आप अपने भक्त की रक्षा कर रहे हो, और दूसरा, दूसरे भक्त की प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहे हो। एक तरफ अर्जुन की रक्षा कर रहे हो और दूसरी तरफ मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा कर रहे हो। तो ये भीष्मदेव देख रहे हैं। दरअसल भीष्मदेव जिस रूप को देख रहे थे, अर्जुन भी उतना भाग्यशाली नहीं था, क्योंकि अर्जुन क्या कर रहा था, जब कृष्ण भागे तो क्या अर्जुन खड़ा था और देख रहा था बहुत अच्छा अब भीष्म मरेंगे? नहीं, अर्जुन भी तुरंत कूद गया था पीछे पीछे, और अर्जुन ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया, पकड़ रहे थे भगवान को, खींच रहे थे, रुक जाइए रुक जाइए। लेकिन भगवान इतने गुस्से में थे, इतने क्रोध में थे कि अर्जुन को घसीटते हुए ले जा रहे थे, अर्जुन रोक नहीं पा रहा था। ये तो अर्जुन क्या देख रहा था, अर्जुन तो पीछे से देख रहा, भगवान को नहीं देख पाया, तो अर्जुन रोक रहा है। लेकिन जो जो रूप भीष्म देव देख रहे हैं वो अर्जुन भी नहीं देख पाया। तो इसीलिए भीष्म देव कहते हैं कि हे मुकुंद, आपके चरणों के प्रति मेरी या आपके प्रति मेरी आसक्ति बढ़े। श्रील प्रभुपाद बहुत सुंदर बात बताते हैं। प्रभुपाद कहते हैं कि इस पूरे प्रसंग में ऐसा प्रतीत हो रहा था महाभारत के युद्ध में कि मानो ये विशेष करके इस प्रसंग में कि मानो अर्जुन की तरफ है भगवान, अर्जुन के ये पक्षपात कर रहे हैं भगवान, ऐसा लग रहा था कि अर्जुन को बचा रहे हैं, भीष्म को मार रहे हैं। लेकिन प्रभुपाद कहते हैं सत्य क्या है, सत्य ये था कि सारी जो लीला रची भगवान ने, उतर कर जाना, भागना, मारना, इस सब करना, ये केवल भीष्म को एक विशेष कृपा देने के लिए था। तो अर्जुन के लिए नहीं था, अर्जुन को तो भगवान बचा रहे ठीक है, लेकिन अब वो भीष्म को कृपा देना चाहते। और ये लिखते हुए प्रभुपाद लिखते हैं कि इस लीला का, इस प्रसंग का एक बड़ा ही विशेष बात जो हम इससे सीखते हैं, एक बड़ी बड़ी विचित्र, बड़ी विशेष बात हम इससे सीखते हैं। क्या है वो, कहते हैं कि इससे हमें पता चलता है कि एक भक्त भगवान को शत्रु बनकर भी प्रसन्न कर सकता है। ये तो बड़ी, ये तो सुनने में भी बड़ा विचित्र लग रहा है। फिर प्रभुपाद कहते हैं यस, ये एक जो भक्त है भगवान को शत्रु बनकर भी प्रसन्न कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो कहते हैं कि भगवान पूर्ण है, उनका शत्रु कौन हो सकता है? तो भगवान का तो कोई शत्रु नहीं है, वो तो भक्ति देखते हैं। भवतो समम पुण्यम भावग्राही जनार्दन, भगवान तो भक्ति देख रहे हैं, वो ये नहीं देख रहे कि ये मेरा शत्रु बना हुआ, ये मेरा मित्र, क्योंकि कृष्ण का ना कोई शत्रु है ना कोई मित्र। समोहम सर्वभूतेषु नमे द्वेष्यस्ति न प्रियः, भगवद गीता में भगवान कहते मैं तो सबके लिए समान हूं, न किसी से द्वेष करता हूं ना ही कोई मेरा प्रिय है। तो फिर ये विशेष कृपा क्यों? तो भगवान कहते जो मुझ पर पूर्ण रूप से आश्रित है, मेरा कर्तव्य है उनको संभालना। अब जो जो मुझसे दूर रहना चाहते हैं ये यथा माम प्रपद्यन्ते, तो मैं उनकी भी इच्छा पूरी करता हूं। जो केवल मेरे चरणों में पड़े रहना चाहते हैं मैं उनकी भी इच्छा पूरी करता हूं। तो भगवान भगवान का कोई शत्रु नहीं है। भगवान क्या, भगवान के महान भक्तों का कोई शत्रु नहीं होता। युधिष्ठिर महाराज का एक नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु मतलब जिसके शत्रु ने जन्म ही नहीं लिया, तो फिर दुर्योधन कौन था? ये सब लोग कौन थे जिनके लिए लड़ रहे? ये इन्हें शत्रु मानते थे, लेकिन भीष्म, ये युधिष्ठिर ने कभी किसी को शत्रु नहीं माना। और भगवान, भगवान का कौन शत्रु? सारे उनकी संतानें हैं। तो क्या फिर भी भगवान का कोई शत्रु हो सकता है? एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भगवान का शत्रु कौन होगा। तो भगवान के लिए कोई शत्रु नहीं है, लेकिन हम भगवान से शत्रुता प्रकट करते हैं, हम भगवान को शत्रु मान लेते हैं। तो भगवान के शत्रु कौन है? चलिए इस पर देखा जाए। प्रभुपाद लिखते हैं कि अगर शत्रु के रूप में भी आए भक्त, तो जैसे बहुत सारे जय विजय आए, उन्होंने आनंद दिया, भगवान ने मुक्त किया, शिशुपाल को मुक्त किया, तो शत्रु कौन है भगवान का? तो भगवान का शत्रु वो है, पहला बात, भगवान का शत्रु वो है जो उनकी उपस्थिति और उनके उद्देश्य का विरोध करता है। जब भगवान इस जगत में आते हैं तो उनका एक उद्देश्य होता है, जीवों को भक्ति में लगाना और फिर उन्हें भगवान के धाम, अपने धाम वापस ले जाना। तो जो व्यक्ति उनकी उपस्थिति का और उनके उद्देश्य का विरोध करता है, वो उनका शत्रु, अर्थात वो उनसे शत्रुता उत्पन्न करता है। भगवान के लिए तो वो भी शत्रु नहीं है, लेकिन एक दृष्टि से, चलिए हम इस दृष्टि से माने कि हमारी दृष्टि से हम कैसे शत्रुता उत्पन्न करते हैं, तो ये पहला कारण। दूसरा कारण, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भगवान के आदेशों की अवहेलना करता है, वो भगवान का शत्रु। भगवान के आदेश हैं शास्त्र में, जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, जो भगवान को नहीं मानता, गीता को नहीं मानता, या जानता है भगवान को मानता है लेकिन गीता का पालन नहीं करता, भगवान के आदेश का पालन नहीं करता, क्या लाभ है ऐसे भगवान को मानने का? पहले व्यक्ति हैं जो भगवान के आने से ही विरोध करते हैं, दूसरे व्यक्ति हैं जो ठीक है आप आए हैं, ठीक है, लेकिन आप जो कह रहे हैं वो हम नहीं सुनेंगे। तो ये व्यक्ति भी शत्रु है। अगर आप भगवान के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हो तो आप शत्रु। तीसरी चीज, ऐसी कोई स्थिति, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसी कोई वस्तु, ऐसी कोई संपत्ति जो आपको आकर्षित कर ले भगवान से अलग, वो भगवान का शत्रु। जब हमें भगवान से अलग ले जाया जाता है, एक आकर्षण दिखाया, एक लालच दिखाया जाता है, जैसे माया देवी वो हमें लालच देती हैं इस जगत में, कुछ हमें छोटा सा कुछ चीज दिखाकर, जरा सा आनंद दिखाकर हम भागते हैं पागलों की तरह उसके पीछे, सब कुछ छोड़कर। तो ऐसा व्यक्ति वो शत्रु है। और भक्ति की दृष्टि से कौन शत्रु है? हम लोग भक्त हो गए हैं तथा कथित, एटलीस्ट हमारे लिए तो हम यही कह सकते हैं। तो हमारे, हम कैसे भगवान के अभी भी शत्रु हैं? अगर हमने अभी भी भौतिक इच्छाओं को बनाए रखा है तो हम शत्रु हैं जानबूझकर। हाँ, हम संघर्ष कर रहे हैं भौतिक इच्छाओं को त्यागने का, तब आप शत्रु नहीं हो। लेकिन आपने जानबूझकर बनाए रखा है, चलो भक्ति भी कर रहे हैं, ये भी चलता रहे, जीवन अच्छा जाएगा, शत्रु है आप। अगर आप भगवान के भक्तों से द्वेष करते हैं तो आप शत्रु हैं। जब भगवान शांति दूत बनकर गए, दुर्योधन के घर पर आए हैं, दुर्योधन के महल में आए हैं, दुर्योधन ने 56 भोग बनवाया, बहुत बड़ी व्यवस्था की दुर्योधन ने, और सबको बुलाया, कोई किसी के घर में खाना वाना नहीं बनेगा, सब आइए, बहुत बड़ा फीस्ट होगा, कृष्ण आ रहे हैं, सारी व्यवस्था हो गई। और फिर जब बातचीत हो गई, उसके बाद चलो अभी जाना, सबके लिए फीस्ट है, कृष्ण चले गए वहां से, विदुर के घर चले, बहुत सुंदर प्रसंग है। दुर्योधन को बड़ा क्रोध आ गया, कैसे, अरे मैंने इतनी व्यवस्था की। उन्होंने कहा, भीष्म से कहा, द्रोणाचार्य से कहा, जाइए आप लेकर आइए उन्हें, ये कैसे जा कैसे सकते हैं। भीष्म गए, द्रोणाचार्य गए, नहीं क्या कर रहे हैं आप, भगवान प्रभु आइए, इतनी बड़ी व्यवस्था, इतना बड़ा प्रसाद, इतना बड़ा व्यवस्था आपके लिए किया गया है, आइए। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं कभी उस व्यक्ति के घर में नहीं जाऊंगा जो मेरे भक्तों से द्वेष करता है। ये दुर्योधन मेरे भक्तों से, पांडवों से द्वेष करता है, मैं इसके घर पे कुछ नहीं खाता। और कहकर चले गए विदुर के घर पर। विदुर जी भी वहीं थे, तैयारी कर रहे थे। विदुर जी तो सबको वहीं बुलाया था। विदुर रानी भी बस जाने वाली थी, घर से बाहर निकलने वाली थी, अचानक कृष्ण आ गए। भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। आंखों में आंसू आ गए विदुर रानी के। कृष्ण आए हैं जिनके लिए सारा ब्रह्मांड कुछ लेकर खड़ा रहता है। प्रभु स्वीकार कीजिए, प्रभु स्वीकार कीजिए। और वो प्रभु उनके द्वार पर चले आए हैं, भूख लग रही है, कुछ दे दो। समझ नहीं आया क्या करें, भागी। कुछ बनाया तो था नहीं, क्योंकि जाना था सब वहां पर, कुछ था ही नहीं, तो केले पड़े थे ले आई। और आंखों में आंसू हैं, देख नहीं रही हैं क्या कर रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। आज प्रभु आ गए हैं घर पर, भगवान आ गए हैं घर पर, कृष्ण आए हैं घर पर और मांग रहे हैं, किससे, मुझसे मांग रहे हैं। ये भाग्य है, देखिए ये भक्त है। सेवा का अवसर मिलता है तो आंखों में आंसू, कृतज्ञता के आंसू आने चाहिए। हम लोगों के भी आंसू आते हैं, लेकिन किसी और कारण से आते जब सेवा दी जाती है। लेकिन ये भक्त है। विदुरानी सिखला रही है हमें, सेवा मिली है भगवान को, कुछ बस एक केला खिलाने की सेवा मिल गई, भाव विभोर हो गई है, कृतज्ञता के आंसू आ रहे हैं। और उन्हीं में वो छील रही हैं और ध्यान नहीं है, केले को फेंक रही हैं और छिलका दे रही हैं। और देखिए भगवान भक्त वत्सला, वो खा रहे हैं, छिलका खा रहे हैं, बड़े प्रेम से खा रहे हैं। ऐसे नहीं कि मुंह टेढ़ा वेढ़ा हो रहा है कि अरे क्या कर रही है ये क्या, बहुत प्रेम से, आनंद से, चाव से खा रहे हैं। और इतने में विदुर जी को पता चला, जब भीष्म और द्रोण वापस गए कि नहीं वो नहीं आ रहे, वो तो अरे आपके घर चले गए विदुर जी, आप यहाँ क्या कर रहे हो। विदुर भागे भागे आए हैं, कृष्ण मेरे घर। और विदुर जी ने आकर देखा। इस प्रसंग में हम देखते हैं कि विदुर से ज्यादा भक्ति विदुरानी की, क्योंकि जब कृष्ण आए हैं तो उसको कुछ पता नहीं था, भाव विभोर हो गई है। लेकिन जब विदुर जी आए हैं, विदुर जी ने देखा ये क्या हो रहा है, अरे छिलका खिला रही है। विदुर जी ने तोड़ा, रोक दिया। भगवान ऐसे हाथ से कह रहे थे, नहीं 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 नहीं, कुछ मत कहो उसे, कुछ मत कहो। लेकिन विदुर जी ने कह दिया। विदुरानी को ध्यान आया, उसने देखा मैं क्या कर रही हूं, क्षमा मांगी, उससे फिर दूसरा एक केला लिए, केला दिया इस बार भगवान को। भगवान ने केला खाया और विदुर जी से कहा मजा नहीं आया। वो जो आनंद उस छिलके में था, वो जो प्रेम उस छिलके में था, ये केले में नहीं। तो भगवान के भक्तों से जो द्वेष करते हैं, तो अगर हमारे हृदय में भगवान के भक्तों के प्रति रंच मात्र भी द्वेष है, शत्रु है। घोषणा कर दी भगवान ने महाभारत, तो अगर इच्छाएं बनाई हुई हैं, शत्रु है। भगवान से, भगवान के भक्तों से द्वेष कर रहे हैं, शत्रु हैं। भगवान की योजना को नहीं समझ रहे दुनिया में। भगवान के पास आए हैं, भगवान से कुछ चाहते हैं, लेकिन जब भगवान कुछ देते हैं तो हम उसको अपनी तरीके से स्वीकार करना चाहते हैं, ये भी शत्रु है। समय युद्ध हो रहा था दो सेनाओं का, तो एक सेना प्राय समाप्त होते होते एक सैनिक बच गए, तो बाकी जो सैनिक थे मारने के लिए उसको भागे, पकड़ने के लिए उसको भागे। अब ये भागा बचाने के लिए अपने आप को, तो भागते भागते वो एक गुफा में आ गया। गुफा का छोटा सा द्वार था, तो ऐसे भी अंदर चला गया गुफा में। मैं देखता हूं अंदर क्या होगा, गिर गया, पड़ गया, अब कुछ नहीं है। अब वो भगवान से उसने प्रार्थना की है, भगवान रक्षा कर लो मेरी, आपकी शरण में हूं। तो उन्होंने देखा कि एक मकड़ी वहां पर आई और वो जो द्वार था उसका, उस पर जाला बुनने लगी। तो इस व्यक्ति ने सोचा कि भगवान मैंने आपसे आपकी अपनी रक्षा के लिए कुछ कहा था, आपने मकड़ी को भेजा, ये मकड़ी मेरी रक्षा करेगी, ये जाला है तो कोई भी ऐसे जरा सा तोड़ देगा अंदर आ जाएगा, भगवान ये कैसी आपकी आपने रक्षा की, तो विश्वास उठ गए। लेकिन खैर कुछ कर नहीं सकता था, वहीं पड़ा रहा और मकड़ी में जाला बुन दिया, उस छोटे से जो स्थान था, द्वार था आने का, उस पर जाला बुन दिया। इतने में उसने आवाज सुनाई दी, सैनिक ढूंढते हुए आए उसको, यही कहीं होगा, यही कहीं होगा, देखो उसको। और फिर सैनिकों ने देखा तो अरे ये गुफा है, देखो कहीं उसमें तो नहीं है। तो एक व्यक्ति जाने लगा, फिर अचानक रुक गया। उसने कहा नहीं, इसमें नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर इसमें होता, यहां पर अंदर जाता, तो फिर ये जो मकड़ी का जाला, इसको तोड़ के जाता। मकड़ी का जाला पूरा का पूरा है, इसका अर्थ है कि अंदर कोई नहीं गया, चलो कहीं और चलते। और वो लोग चले गए। तब इस सैनिक ने देखा कि भगवान किस तरह रक्षा कर सकते हैं। इसलिए जो भगवान के योजना पर, भगवान के कार्यों पर श्रद्धा नहीं है, अगर हमें, अगर हमारे मन में भी आ जाता है भगवान ये क्या कर रहे हो, मैंने इतनी भक्ति की आपकी, आपसे यही तो मांगा था और आपने ये भी नहीं दिया। कई बार भक्त कहते हैं अरे आपसे क्या मांगा, बस अच्छी अच्छे स्वास्थ्य तो मांगा था ताकि आपकी सेवा कर सकूं, भगवान आपने वो भी नहीं दिया मुझे। शत्रु क्योंकि योजना नहीं समझ रहे भगवान क्या कर रहे हैं। अरे भगवान आपको, जैसे सैनिक को इतनी पूरी बड़ी सेना से एक मकड़ी भेजकर भगवान ने बचा लिया, तो फिर हम क्यों सोचें कि भगवान हमारे लिए क्या कर रहे हैं, क्या वो करेंगे रक्षा। तो ये शत्रु है। अगर हमारे हृदय में काम है, क्रोध है, किसी भी तरह से अगर हम भगवान से नहीं जुड़ रहे हैं तो शत्रु है। तो इस तरह से हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के शत्रु ना बने। प्रभुपाद आगे कहते हैं कि भगवान का कोई शत्रु बन भी जाए भगवान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। क्यों? अजीत है वो। अजीत मतलब जिनको कोई जीत नहीं सकता, भगवान अजीत है। तो अजीत को जीता कैसे जाता है, इसको ब्रह्मा जी समझाते हैं। भागवतम के 10वें स्कंद में ब्रह्मा जी कहते हैं, ज्ञाने प्रयास मुदपस्य नमंत एव जीवन्ति सन्मुखरितां भवदीय वार्ता स्थाने स्थित श्रुतिगतां तनुवात्मनो भी ये प्रायशो जितो जितो व्यसितैस्त्रलोक्यम। तो वो कहते हैं कि अजीत है, जीतो जीतो प्यस्य, अगर अजीत को जीतना है तो क्या करना चाहिए। कहते ज्ञानी प्रयास उदपस्य, ये सब प्रयास छोड़ दो, ज्ञान के द्वारा, कल्पना के द्वारा तुम भगवान को प्राप्त कर सकोगे। जीवंति सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता, आपकी कथाओं को जो सुनता है, किससे? साधुओं से। सन्मुखरिताम भक्तों से जो आपकी कथाओं को सुनता है। स्थाने स्थित श्रुतिगत तनु वाक मनो भी, जहां है जिस अवस्था में वहां रहकर तनु वाक मनो भी, अपने शरीर को, अपनी वाचा को, अपने मन को केवल आपके कथाओं के श्रवण के द्वारा, आपके नामोच्चारण के द्वारा आप में लगाता है, ये प्रायशो जितो जितो प्यसितैस्त्रलोक्यम, हे अजीत वो आपको जीत सकता है। तो इसका सार क्या है? इसका सार है बहुत सरल, जो प्रभुपाद ने दिया, जो आचार्यों ने दिया, जो चैतन्य महाप्रभु ने दिया। और क्या है वो सार? केवल श्रवण कीर्तन। कभी कभी हमें लगता है कि अरे नहीं नहीं भगवान को प्राप्त करना कुछ बहुत बड़ा काम करना है, चलो हिमालय पर जाते हैं, हिमालय पर हजारों वर्ष तपस्या करेंगे, चलो कोई पत्थर तोड़ कर आते, कहीं कुछ ये करते हैं। बहुत सरल, केवल श्रवण कीर्तन, बस। स्थाने स्थित श्रुतिगताम तनुवाक मनो भी ये प्रायशो जितो जितो प्यस्यतैस्त्रलोक्यम। सो जो भक्त इस तरह से भगवान की सेवा में लग जाते हैं, और इस जगत में देखिए जो श्रवण कीर्तन है ये भी एक सेवा है, और जो भक्त इस तरह से भगवान की सेवा में लगे अपना सारा समय सन्मुखरिताम भवदीय वार्ता भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुन रहे हैं, भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं, जो इस तरह से भगवान की सेवा में लग जाते हैं उन्हें भगवान के धाम में वही अवसर मिलता है। तो यहां भगवान की सेवा करके, भगवान के गुणगान करके, भगवान की कथा सुनकर हम मार्ग खोल रहे हैं आध्यात्मिक जगत का। वैसे एक प्रश्न आता है, क्या भक्त को आध्यात्मिक जगत जाने की आवश्यकता है? तो एक बड़ी सुंदर बात आपको बताते हैं कि जब एक शुद्ध भक्त कहीं पर कीर्तन करता है, एक शुद्ध भक्त कहीं पर भगवान के नाम का गुणगान करता है, बोलता है भगवान के बारे में, सुनता है भगवान के बारे में, जब भक्त बैठते शुद्ध भक्त बैठते हैं और ये सब चर्चा करते हैं, तो जिस स्थान पर वो बैठते हैं वो वैकुंठ हो जाते हैं। इसलिए भक्त के लिए भगवान से ये प्रार्थना करना कि हे भगवान मुझे वैकुंठ में लेके जाओ, लेके जाओ, आवश्यक नहीं है। एक शुद्ध भक्त वैकुंठ प्रकट कर सकता है और इसका प्रमाण है श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद ने भौतिकता की राजधानी अमेरिका, वहां पर वृंदावन को प्रकट करा दिया। ये भक्त की शक्ति है। कृष्ण से तुमार कृष्ण दीते पारो तुमार शक्ति आछे, आमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तब पाछे पाछे। बस जीवन यही होना चाहिए। हमने जीवन में बहुत सारे जटिलताओं को बना लिया है, तो ये ठीक है, वो जटिलताएं हैं, बंधन है इस जगत में, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना चाहिए कि अगर थोड़े समय के लिए भी हम कृष्ण कथा को सुन सकें, वो प्रेम उत्पन्न कर सकें जो मदर यशोदा के पास है, माता यशोदा के पास, यशोदा मैया का प्रेम अगर हम अपने हृदय में एक क्षण के लिए, एक क्षण, जीवन सफल हो जाए। और उसके लिए क्या करना चाहिए? प्रारंभ में हमें एक प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना चाहिए, और अगर प्रामाणिक गुरु की शरण में जाकर हम बड़ी कड़ाई से उनके आदेशानुसार नियमों का पालन करते हैं, जैसे ध्रुव महाराज ने किया, नारद मुनि ने उन्हें आदेश दिया जाओ ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसको जब उन्होंने बड़ी कड़ाई से उसका पालन किया, तो फिर भक्त के लिए ये कठिन नहीं है कि वो भगवान को प्राप्त कर ले। क्योंकि भगवान किस चीज से आकर्षित होते हैं? चैतन्य चरितामृत में भगवान कहते हैं कि हर कोई मेरे पास आता है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं अर्पण करता है, ये सब करता है, इन भगवान बोलते हैं मुझे उससे कुछ ज्यादा आनंद नहीं आता। तो आनंद किससे आता है? बहुत सुंदर वर्णन भगवान ने किया है। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है, आमरे ईश्वर माने आपना कहीं न। क्या कह रहे हैं भगवान? आमरे ईश्वर माने, जो मुझे ईश्वर मानता है, और आपना के हीन, अपने आप को बहुत निम्न, बहुत नीच, बहुत हीन मानता है। तार प्रेम वश आमी नहाई बेधीन, तो उसके प्रेम के वश में मैं नहीं आता, मैं उसके अधीन नहीं होता। हाँ ठीक है, वो भक्ति कर रहा है, मुझे स्वामी मान रहा है, ठीक है, जो उसको चाहिए मैं उसको प्रदान करता हूं, लेकिन मैं उसके अधीन नहीं होता, वो मुझे नियंत्रित नहीं कर सकता, मुझे नियंत्रण करने के लिए प्रेम चाहिए। तो कैसे, कौन नियंत्रण कर सकता है प्रभु आपको, जो कहता है कि हमारे ईश्वर माने आपना के हीन तार प्रेम वशे आमी नहीं अधीन। ठीक है, आप उसके अधीन नहीं हो, तो किसके अधीन हो भगवान? भगवान कहते हैं मैं किसके अधीन हूं ये सुनो, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति एई भावे जेई मोरे कोरे शुद्ध भक्ति। भगवान कहते हैं मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भाव है जो जो मुझे ये कहता है कि ये मेरा पुत्र है, ये मेरा सखा है, ये मेरा प्राणपति है। यही भावे, इस भाव से जो करे, जो भक्ति करता है, शुद्ध भक्ति, मतलब ये भाव भक्ति के आधार पर होना चाहिए। तो भगवान क्या कहते हैं, अपना के बड़े माने हमारे समहीना, अपने आप को बड़ा मानता है और मुझे अपने समान या अपने से हीन मानता है, हमारे समहीन मतलब बड़ा मानता है, मतलब ए कृष्ण वहां मत जाओ, यशोदा मैया कहती है चोट लग जाएगी, इधर आओ यहाँ खेलो, चलो खाना खाना है, चलो आ जाओ, समय हो गया, ज्यादा मत खेलो। अपना के बड़ा माने हमारे समहीन, नंद महाराज कहते जाओ जरो चप्पल उठाकर लेकर आओ मेरी, या फिर जो ग्वाल वाल है वो कहते हैं कि देखो कृष्ण कई बार तुमसे कहा है, तुम अपने आप को ज्यादा कुछ महान मत समझा करो, खेलना है तो ठीक रहो ठीक से, नहीं तो कल से खिलाएंगे नहीं सर। कृष्ण कहते जो तुम कहो, तो इसको कृष्ण कह रहे हैं, अपना के बड़ा माने हमारे समहीन, शेई भावे हई आमी ताहर अधीन। कृष्ण कहते शेई भाव, ये जिसको भाव है उसके आमी ताहर अधीन, मैं उसके अधीन रहता हूं। तो भगवान को जीतना है तो श्रवण और कीर्तन के द्वारा वो प्रेम उत्पन्न करना है, जिसके द्वारा हम कृष्ण को क्या मान सके, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, ए भाव जे मोरे कोरे शुद्ध भक्ति। और यही भक्ति गोपियों की है, जब गोपियां कृष्ण से प्रेम करती हैं तो कभी कभी कृष्ण की भर्त्सना करती हैं, कृष्ण को डांटती हैं, तो देख सुनने में लगता है कैसे कोई डांट सकता है कृष्ण को, लेकिन वो डांटती है और कृष्ण को बहुत आनंद आता है। इसीलिए कृष्ण कहते हैं प्रिय जदि मान कोरी कर ये भर्त्सना, प्रिय जदि मान करी, अगर गोपियां मान करती हैं क्रोध में आ जाती हैं और क्या करती हैं, करो ये भर्त्सना, तो मेरी भर्त्सना करती है, मेरी निंदा करती हैं, वेद स्तुति हरते हरे से मोर मन, बोलते वो वेद स्तुति से ज्यादा ये उनकी भर्त्सना मेरे मन को आकर्षित करती। तो ये कृष्ण हैं जो प्रेम से जीते जाते हैं, इसलिए प्रभुपाद बताते हैं कि भगवान के लिए समान है सब, चाहे वो शत्रु हो या मित्र, क्योंकि शत्रु भी उद्धार हो जाता है। तो इसीलिए, लेकिन जब ऐसी तरह के आदान प्रदान होते हैं तो भगवान, तो भगवान का गुणगान तो दुनिया भर करती है, लेकिन उस भक्त का गुणगान हो जाता है। देखिए पूरे कार्तिक महीने में हम यशोदा का गुणगान करते रहे कि कैसे यशोदा ने बांध दिया कृष्ण को, और कैसे भीष्म ने उनकी प्रतिज्ञा तुड़वा दी, और अब हम लोग उनका गुणगान कर रहे हैं। सो भगवान बड़े क्रोध में भीष्म देव की ओर जा रहे हैं। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर समझाते हैं कि दरअसल भीष्म देव की ओर ऐसे जा रहे थे, बड़ी तेजी से क्यों जा रहे थे, वो कहते ऐसे जा रहे थे जैसे एक प्रेमी प्रेमिका के पास जाता है। बहुत तीव्रता है, बस मिलना है मिलना है, और उस भाव में भगवान जा रहे हैं भीष्म देव की ओर। दिखने में ऐसा लग रहा है कि भगवान मारना चाहते हैं, अगर मारना चाहते होते तो भीष्म को छोड़ते थोड़ी उस समय। दिखने में ऐसा लग रहा था कि भगवान मारना चाहते, लेकिन दरअसल उनको भीष्म को आनंद देना चाहते थे। तो इसीलिए भीष्म अब आगे भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब ये जो रूप है पार्थ सारथी का, तो मेरी रति इसी में हो। और इतना ही नहीं, आगे गोपियों का वर्णन और राजसूय यज्ञ का वर्णन भी उन्होंने किया, बहुत सुंदर उसमें भी हमें संदेश मिले हैं, तो इसको हम कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।